ऑस्ट्रेलिया आने वाले तारकीन वतन को इब्तदाई दिनों में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनमें किराए का मकान हासिल करना भी एक मसला होता है। दीगर तरक्की याफ्ते ममालिक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में किराएदार को क्या हुकूक हासिल हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आप जब किराए का मकान लेने जाते हैं तो किस तरह की मालूमात आपके पास होना चाहिए, इन मौजूदात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम। खुर्रम, पहले जरा हमारे सुनने वालों से अपना तारुफ करा दीजिएगा।
खुर्रम शहजाद जी फ्रॉम नाइडस ग्रुप रियल एस्टेट इन रूडी हिल।
खुर्रम, दीगर दुनिया के ममालिक हैं, मगरबी ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट मार्केट कैसी है, और यहाँ खास तौर पे जो लोग रेंट पे लेना चाहते हैं उनको क्या राइट्स हासिल हैं?
ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा रेगुलेटेड है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ कि जो हमारे लोग नए पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए, सबसे पहले तो ये है कि जो जितने बिजी एरियाज हैं जैसे सिटी के करीब करीब के जो इलाके हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकल के जब आप देखते हैं प्रॉपर्टीज रेंटल के लिए, तो अभी भी उधर वैकेंसी रेट काफी मतलब ज्यादा है, जिसमें से बहुत ज्यादा नए अपार्टमेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी डेवलपर को रेंट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो वो जब आपकी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं होती तो आपको वो लोग काफी जो है वो फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं।
रेंटल हिस्ट्री ना होने की वजह से आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि वो डिपॉजिट बहुत ज्यादा तलब करते हैं मालिक मकान।
नहीं, जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि डिपॉजिट के अलावा ये है कि अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट विद सेविंग्स दिखा सकते हैं, अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं है या इवन कि आप सेंट्रलिंग पेमेंट्स या कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहे हैं वो भी आप शो कर सकते हैं, तो आपको फिर भी कुछ ओनर्स जो हैं वो फेवरेबली देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास रेंटल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो जो फर्स्ट पिक ऑफ प्रॉपर्टी है वो अनफॉर्चुनेटली आपको स्ट्रेट वे सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो मेरी सजेशन है कि वो आप सिटी से थोड़ा सा बाहर के जो इलाके हैं उनमें देखें, 6 महीने साल की हिस्ट्री बिल्ड करके जब आपकी जॉब वगैरह शुरू हो जाए तो फिर आप एक अच्छी पोजीशन में होते हैं कि आप क्लोजर टू सिटी या बिजी इलाकों में या जो मोर कन्वीनियंट प्लेसेस हैं उन पे भी आप रेंट कर सकते हैं। फिर
मौजूदा सूरत हाल क्या है, जो लोग किराए की मकान तलाश कर रहे हैं क्या उनको आसानी से मकानात मिल जाते हैं या अभी भी क्यूज में जाना पड़ता है?
अभी भी असल में ओवरऑल अगर हम देखें तो जितने भी मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, काफी जो सिडनी मेलबर्न ब्रिस्बेन की हम बात करते हैं, तो हाउसिंग शॉर्टेजेस अभी भी हैं ओवरऑल। ये तो एक पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर है, तो उसमें उतनी बड़ी क्यूज उतनी बड़ी वेटिंग लाइंस नहीं है जो कि मतलब आज से 5-10 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग बूम आपने शायद सुना होगा जो कि सिडनी और मेलबर्न में अभी हुआ है। तो अभी भी अगर आप इनर वेस्ट के इलाकों में जाएं उसमें भी अपार्टमेंट्स में स्पेशली काफी ज्यादा वेकेंसी है, जो कि मेरे ख्याल में हमारे नए आने वाले माइग्रेंट्स के लिए इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अलावा ये है कि अगर आप सिटी से 30-40 किलोमीटर आउट जाते हैं, अगर साउथ वेस्ट में या के वेस्टर्न सबर्ब्स में, और मेलबर्न में भी सेम थिंग अप्लाई, वहां पे बहुत ज्यादा हाउस एंड लैंड पैकेजेस अभी डेवलपर्स रिलीज कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, तो उन्हें भी टेनेंट्स की जरूरत होगी। मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा आप शुरू में कंप्रोमाइज कर लें 6 महीने साल, तो आई थिंक आप उसमें एंटर हो सकते हैं। जब आपकी हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी तो फिर आपके लिए इजी होगा। आप अगर अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट या सेविंग्स अगर साथ लाए हैं वो दिखा सकते हैं। उसके अलावा प्रॉमिस टू जॉब, कई लोग ये होता है कि अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं से पाकिस्तान से जब आते हैं तो उनके पास स्पॉन्सर ऑफर जो कुछ होती है, तो वो भी अगर आप शो करें तो इट्स एज गुड एज हैविंग ए जॉब।
जब आप किराए का मकान छोड़ रहे होते हैं तो आपको एक नोटिस तो देना ही होता है, लेकिन साथ साथ आपको अपने डिपॉजिट की भी फिक्र होती है कि आप घर को ऐसी हालत में ना छोड़ें जिसकी वजह से सारा आपका डिपॉजिट ही जब्त हो जाए। क्या मशवरा देंगे आप रेंटल प्रॉपर्टी छोड़ते वक्त क्या क्या करना चाहिए?
सर, उसके लिए जो सबसे पहली चीज है कि जब आप किराए पे मकान लेते हैं तो आपको एक कंडीशन रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट कि उसके 2 कॉपीज होती हैं, एक आपके पास होती है एक रियल एस्टेट के पास होती है। तो जब आप लीज साइन करते हैं तो रियल एस्टेट आपको 1 हफ्ते का टाइम देता है या 2 हफ्ते का टाइम देता है कि आप प्रॉपर्टी में जब मूव इन हो जाए तो हर एक चीज की, हर एक रूम, बेडरूम, बाथरूम, हर एक चीज की आप उसमें कंडीशन रिपोर्ट दी होती है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आप एग्री करते हैं उस कंडीशन रिपोर्ट से या आप नहीं एग्री करते। तो जहां भी आप एग्री नहीं करते तो प्लीज उसमें आप ये लिखें कि अगर उन्होंने रियल स्टेट ने मेंशन किया कि ये लाइट फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑर्डर में, और अगर नहीं है तो आपको उसमें लिखना चाहिए कि ये लाइट वर्किंग ऑर्डर में नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसको ओवरलुक करते हैं उस चीज को। तो फिर जब एग्जिट का टाइम आता है तो वो कंडीशन रिपोर्ट जब मैच होती है एग्जिट रिपोर्ट के साथ, तो उसमें अगर मतलब वो सिमिलर ना हो तो फिर आपको वो पेनल्टीज पे करनी पड़ती है।
ट्रेंड देखा गया है कि जो नौजवान और तालिबे इल्म जिन्हें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो उनको लिए अकोमोडेशन हासिल करना थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर तलबा और तालबात को हमने देखा है कि वो शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं। लीगली शेयरिंग अकोमोडेशन का स्टेटस क्या है?
ये काफी बड़ा टॉपिक है। लीगली तो अगर तो वो डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग या डिपार्टमेंट ऑफ लैंड से अगर वो शेयर्ड अकोमोडेशन अप्रूव्ड नहीं है तो आप एक घर के अंदर मल्टीपल टेनेंट्स को आप नहीं बेसिकली रख सकते। जिस तरह के मतलब कई दफा आपने मीडिया में देखा भी होगा कि यूनिवर्सिटीज के करीब इस तरह की अकोमोडेशन नॉर्मली क्रिएट होती हैं कि अगर हाउस है मतलब एक नॉर्मल 3 बेडरूम हाउस है तो वहां पे 10 लोग रह रहे हैं, तो ये लीगली तो इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो मेरी जो आने वाले तलबा है उनके लिए भी यही है कि बेसिकली अगर 2 लोग या 3 लोग मिल के एक लीज साइन कर लें और उस पे वो क्या होता है कि वो सर्विसेबिलिटी इजी हो जाती है, क्योंकि जो लीगल फेयर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम कैलकुलेट होती है या आपकी रेंटल कमिटमेंट जो कैलकुलेट होती है वो 30% ऑफ इनकम बेसिकली। अगर आपकी $1,000 वीक इनकम है तो आपकी जो 300 वीक जो आपकी डिस्पोजेबल उस इनकम का हिस्सा है वो कैलकुलेट होता है रेंट की तरफ। तो उसमें ये है कि अगर आप 3 बंदे मिल के ले रहे हैं तो इट्स इजियर, मतलब आपके लिए आसानी है उसमें। तो उसके अलावा अगेन वही मेरी मेरा मशवरा होगा कि मतलब थोड़ा सा सिटी से बाहर या कि जहाँ पे वैकेंसी रेट ज्यादा हो, जहाँ पे अपार्टमेंट्स काफी ज्यादा वेकेंट है रेंट के लिए, उनमें करें।
किराएदारों को किराया बढ़ने की शिकायत रहती है। कितना लीवरेज खुद किराएदार के पास होता है कि वो जो किराया बढ़ने का जो भी उसके पास नोटिस आए उसके बारे में कुछ बारगेन कर सके?
किराएदार के पास जी बिल्कुल हकूक होते हैं कि वो जो अगर मालिक मकान किराया बढ़ा रहा है तो उसको चैलेंज करने का। मिसाल के तौर पे अगर आप 400 वीक आप रेंट पे कर रहे हैं तो अगर फॉरन आपको वो कहते हैं जी कि हम $30 या $40 वीक बढ़ा रहे हैं आपका, तो ये फेयर ट्रेडिंग ने आपको ये हकूक दिए हुए हैं कि आप उसको मार्केट के रेंट के साथ कंपेयर करके अगर मतलब लेट्स से कि अगर वो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो अगर उसका रेंट मार्केट में 410 या 420 चल रहा है और अगर वो आपको 440 चार्ज कर रहे हैं तो ये चीज आप फेयर ट्रेडिंग में ट्रिब्यूनल में आप चैलेंज कर सकते, मतलब अगर आप चाहें तो मतलब चैलेंज करके तो आप इसको डिनाई भी करवा सकते।
जिस किराए के मकान में आप रह रहे हो उसमें किसी ऐसी चीज की जरूरत हो जो आपके रहने के लिए जरूरी हो, या मालिक मकान ये समझता हो कि ये गैर जरूरी है, इसका फैसला किस तरह किया जाता है? फर्ज कीजिए कि कुछ लोग एक घर में रह रहे हैं जो टॉप स्टोरी का यूनिट है उनका, और उसमें बहुत शदीद गर्मी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है सबसे ऊपर की मंजिल में, और वो चाहते हैं कि एयर कंडीशन उसमें लगाया जाए। इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स बवक्त जरूरत अगर उनको होती है किराएदारों को, तो इसकी मेरिट क्या बनती है?
जब लीज आपकी स्टार्ट होती है तो सबसे बेहतरीन मौका तो वही होता है कि आप लीज के स्टार्ट पे ये चीज रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप लीज के अंदर हैं विद इन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आप, तो उसमें वो फिर मालिक मकान की डिस्क्रेशन पे होता है वो अगर वो ऑब्वियसली एसी लगवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि भाई जो मालिक मकान है वो उनके भी एक्सपेंसेस और हर चीज कमिट होती है प्रॉपर्टी के साथ, तो अगर वो कर सकते हैं तो वो नॉर्मली जहां तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है वो करते हैं, ये 50-50 जाता है। लेकिन आपका बेस्ट ये जो टाइम टू नेगोशिएट होता है वो लीज के स्टार्ट पे होता है कि भाई आप उस वक्त कहेंगे कि ये आप हमें करवा के दें तो हम तब एंटर होंगे।
और इसी तरह से अगर लीज के दौरान में किसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाए, शावर लीक हो रहा है या गैस की लीकेज की प्रॉब्लम या कोई भी तरह की मेंटेनेंस, वो किसकी जिम्मेदारी होती है?
वो एंड जो जो जितने भी स्ट्रक्चरल या मेजर लीक्स या कुछ इस तरह के जो इश्यूज होते हैं जी वो इमरजेंसी रिपेयर में आते हैं, और उसमें अगर आप रियल स्टेट को रिपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी इशू तो वो रियल स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करवाएं। क्योंकि वो आपका एज ए जो किराएदार आपका राइट है फ्रॉम ऑफिस ऑफ फेयर ट्रेडिंग कि आपको वो स्ट्रेट वे इमरजेंसी रिपेयर, जैसे हॉट वाटर नहीं आ रहा या क्या उसे कहते हैं, जब कोई मेजर लीक हो गया है या कोई गैस लीक है या इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो ये जितने भी इसके मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो इमरजेंसी रिपेयर के अंदर आते हैं। तो अगर आपका मालिक मकान ये रियल एस्टेट डिनाई कर रहा है तो वो लॉ ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं अगेन ट्रिब्यूनल को, टेनेंसी ट्रिब्यूनल को या फिर ट्रेडिंग को आप।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। ऑस्ट्रेलिया में नए आने वाले और यहाँ बसे हुए लोग जो किराए के मकान में रहते हैं या किराए पर मकान हासिल करना चाहते हैं, हमें यकीन है कि हमारे सुनने वालों के लिए ये मालूमात कारामद साबित होगी।